जयनवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सर्वसाऊनं कविय गणधायिकम् वर्यजनानन्दकारिणं वीरं नमियोनपणिस्सामो दंसनमोहस्सखवणवीं। यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयनवला टीका है, जो कषाय पाहुपता सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तेरहवीं पुस्तक में दर्शन मोक्ष छपना का अर्थाधिकार देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 84 पर आ गए। 84 यहाँ कृतकृत्य वेदक की बात अपनी चल रही है अभी, क्योंकि हमने देखा है ये जो दर्शन मोहनि की छपना में टीमकरण कैसे होते, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी सभी बात हमने देखी है। अभी जो अंतिम जो सम्यक प्रकृति की क्षपणा होना बाकी है, जब 8 वर्ष की स्थिति बाकी रहती है, कुछ विशेष बातें बनती हैं। पहले स्थिति कांडक का प्रमाण पल्ले के असंख्यात विभाग था, अब अंतर्मूर्त होता है। पहले अनुभाग कांडकों में घात होता था, अब उसके प्रति समय अनुसमय अपवर्तन होता है। तीसरी बात, गुण श्रेणी पहले उदयावली के ऊपर थी और गलितावशेष थी, 8 वर्ष की है तब से अवस्थित हो जाती है, यानी नया नया गुण श्रेणी शीर्ष बनता चला जाता है। एक एक उदय की उदयादि
गुण श्रेणी
उदयादि और अवस्थित। कांडघात होते 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 द्विचरम कांडक तो उन्होंने बताया। द्विचरम कांडक के बाद चरम कांडक की बात हो, तो चरम कांडक में क्या विशेषता है कि द्विचरम कांडक से भी चरम कांडक संख्यात गुणा वाला है, बड़ा है,
बड़ा
है। एक बात, तो कितना कांडक होता है तो
संख्यात गुणा होता है अंतिम कांडक।
जो पुराना जो 8 वर्ष की बात चल रही थी वहाँ का जो गुण श्रेणी शीर्ष था, जो पहले गलितावशेष वाला था, उसके नीचे के कुछ निशे लेकर उसका कांडक बनता है और ऊपर के सभी निशे। तो ये जो कांडक बनता है उसकी पहली दूसरी तीसरी फाली किस रूप से होती है, तो नीचे कितनी यानी कितने निशे नीचे झुकते हैं, तो कृतकृत्य वेदक का काल और वो कांडकोत्करण का काल, ये सब मिलकर नीचे छोड़कर ऊपर कांडक रूप से ग्रहण किया जाता है पहली फाली दूसरी फाली। जब तक पहली दूसरी आदि फाली होती है तब तक तो असंख्यात बहुभाग तो नीचे दिया जाता है और असंख्यात अभाग ऊपर अंदर ही अंदर कांडक के अंदर भी दिया जाता है। तो कांडक के अंदर पूर्व में जो गुण श्रेणी थी जहाँ पर, वहाँ अधिक द्रव्य दिया जाता है, ऊपर कम दिया जाता है, तो उसकी तो हमने विस्तार से चर्चा की। ऐसे होते होते नीचे कृतकृत्य वेदक का काल रह गया और ऊपर एक समय रह गया, अंतिम फाली जब फिरी तब मात्र कृतकृत्य वेदक का काल रह गया। तो वहाँ किस रूप से दिया, तो वहाँ उदय के समय से लेकर द्विचरम समय तक सभी जगह गुण श्रेणी रूप से ही दिया जाता है, परंतु वहाँ असंख्यात गुणा जो दिया था और अंतिम निषेक में जो दिया द्विचरम से चरम में, वहाँ गुणकार का प्रमाण बहुत ज़्यादा था। उसको हमने कहा था पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल जितना वहाँ गुणकार होता था, यानी नीचे जो गुणित प्रमाण में जो गुणकार का प्रमाण है उससे ऊपर का गुणकार और ज्यादा है।
ये अंतिम निषेक की
अंतिम निषेक की बात, वही गुण श्रेणी का शीर्ष जब से बना है अंतिम कांडक के समय उसी की बात है, क्योंकि वो कैसा है अभी, नीचे से एक एक नीचे गल रहा है, शीर्ष तो वही का वही रहेगा। ये सारी बातें हमने विस्तार से देखी थी। उसके बाद हमने ये भी देखना शुरू किया था कि अंतिम स्थिति कांडक समाप्त होने पर जीव को कृतकृत्य कहेंगे। अभी यहाँ नया कोई कार्य नहीं रहा, करण परिणाम आदि कुछ नहीं रहे, परंतु पूर्व प्रयोगवश ये जो कुछ कृतकृत्य वेदक में जो क्षपणा की बात चलेगी आगे, एक एक नीचे खिल जाएगा, वो बात तो पूर्व प्रयोगवश वहाँ भी चलती रहेगी। अभी तक तो मरण नहीं हो सकता था, यहाँ कृतकृत्य वेदक के काल में मरण हो सकता है और लेशा परिणाम भी पलट सकता है यहाँ, ये बात यहाँ बताइए। परंतु कोई नील और कपो नील और कृष्ण नहीं हो जाएंगे, कपोत के जघन्य अंश तक ही उसका परिणमन होता है। और उसमें भी ये जो असंख्यात गुणी जो पहले ही रचना हुई थी, तो असंख्यात गुणा उसका उदीर्णा रूप से निकल जाना, उदय रूप से वो बात चलती रहती। अब हम यहाँ आए हैं 84 पेज नंबर 84 सेकंड लाइन से पढ़ेंगे। इस प्रकार सर्वप्रथम कृतकृत्य काल के भीतर होने वाले अर्थ विशेष का कथन कर, अब अधस्तन प्ररूपणा विषय कुछ अर्थ विशेष का कथन करते हुए चूर्णी सूत्रकार इस सूत्र को कहते हैं। फिर वापस पहले की कुछ बातें बताते हुए फिर यहाँ तक आए, जैसे उन्होंने स्थिति कांडक पहले से कैसे कैसे चेंज होते गए उसकी बात दोबारा ली थी, वैसे यहाँ पर और कुछ बातें यहाँ बताएंगे। सूत्र पढ़ेंगे अभी। फलिदोवमस्थ असंख्यज्यति भागीयम अपच्छिमम चिदिखंडयम तस्य चिदिखंडयस्य चरिम समय गुणगार परावत्ति तदो आढ़त्ता ताव गुणगार परावत्ति जाव चरिमस्य चिदिखंडयस्य दो चरिम समयोक्ति शेषेषु समयेषु नत्ति गुणगार परावत्ति। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो अंतिम स्थिति कांडक है, उस स्थिति कांडक के अंतिम समय में गुणकार परावृत्ति होती है। स्थिति कांडक का अंतिम समय ने अंतिम फाली, ये कब कौन से अंतिम की बात है, जब पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो अंतिम स्थिति कांडक था, यानी जब 8 वर्ष प्रमाण स्थिति बननी थी तब की बात। वापस रिपीट करे, यह ऊपर लिखा देखो, अधस्तन प्ररूपणा, अधस्तन यानी ऑलरेडी जो प्ररूपणा बीत गई है उसकी बात, यानी अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण जो बताए हैं उसमें से कुछ बातें यहाँ फिर दोबारा बताएंगे। तथा वहां से लेकर अंतिम स्थिति कांडक के द्विचरम समय तक यह गुणकार परावृत्ति होती है, शेष समयों में गुणकार परावृत्ति नहीं होती। अब इसका अर्थ समझेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। देखो, इस सूत्र द्वारा अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर कृतकृत्य जीव के अंतिम समय तक इस सूत्र में किस अधस्तन स्थान में गुणकार परावृत्ति है अथवा कहाँ नहीं है, इस अर्थ विशेष का ज्ञान कराया गया। गुणकार परावृत्ति यानी कुछ विशेष कार्य, ऐसा पहले उसका अर्थ भी देखा था ना हमने, और जो जिस पद्धति से वो द्रव्य दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूट, उसको भी कहा था। यह था, अभी समझेंगे। अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अपूर्वकरण के लिए, अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर पल्यवम के असंख्यात वे भाग प्रमाण अंतिम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली तक गुणकार प्रवृत्ति परावृत्ति नहीं है। यानी वहां तो पहले में पहले अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो कांडक शुरू हुआ था पल्ले के संख्या के भाग प्रमाण, फिर जब दूरा प्रकृष्टि पल्ले प्रमाण, पहले पल्ले प्रमाण हो गया, उसके पश्चात दूरा प्रकृष्टि होने तक पल्ले का संख्या होगा, और संख्या तो अब शेष रह जाएगा, उसके बाद दुरापकृष्टि के बाद पल्ले के संख्यात विभाग असंख्यात विभाग प्रमाण जो असंख्यात बहुभाग है उतना कांडक होने लगा, होते होते अंतिम कांडक लेना है। वहां तक गुणकार परावृत्ति नहीं है ऐसी बात उन्होंने बताई, उसके अर्थ अभी देखेंगे। यथा तीसरी लाइन, अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम इसलिए लिया कि इसके बाद अंतर्मूर्त प्रमाण होगा,
हो जाए।
नहीं मगर वो तो अंतर्मूर्त समय प्रकृति में ठीक है, उसी की बात चल रही। द्विचरम फाली तक गुणकार परावृत्ति नहीं है क्योंकि उदयावली बाह्य अनंतर स्थिति से लेकर गलित शेष गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रदेश विन्यास करके उससे अनंतर उपरिम गोपुच्छा की आदि स्थिति में असंख्यात गुणे हीन प्रदेश पुंज का निक्षेप कर ऊपर सर्वत्र ही विशेषहीन प्रदेश पुंज का निक्षेप करता है। अभी तक क्या हो रहा था, अपूर्वकरण शुरू हुआ था तभी से स्थिति कांडक शुरू हुए, उसका प्रमाण जैसा है जो हमने अभी जो बताया वो है। अब ये जो स्थिति कांडक होकर जो कुछ बात वहां दी जाएगी, निक्षेप होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कैसे कैसे होता है, तो उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी होगी। एक बात, गुणश्रेणी में असंख्यात गुणाक्रम से दिया जाएगा। दूसरी बात, दूसरी बात कि वहां गुणश्रेणी में तो गुणित प्रमाण में दिया, गुणश्रेणी के ऊपर इमीडिएट ऊपर के निषेध में असंख्यात गुणाहीन दिया, और उपरिम गोपुच्छा में फिर हीन ही नहीं विशेषहीन रूप से दिया। फिर मैं इसको पढ़ती हूँ, देखो यह था अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण अंतिम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली तक गुणकार परावृत्ति नहीं है, यानी ये जो देय द्रव्य है वो किस रूप से दिया जाता है उसके बाद यहाँ चल रही है। हाँ, क्योंकि उदयावली के बाह्य अनंतर स्थिति ने नेक्स्ट निषेक, उदयावली के बाह्य ऊपर का निषेक वहां से लेकर गुण श्रेणी है वो कैसी है, गलित शेषी, और वो कहां तक दिया जाएगा, तो गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से, यानी प्रति निषेक असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा प्रदेश विन्यास करके, यानी परमाणु को देकर उससे अनंतर उपरिम गोपुच्छा की गुणश्रेणी शीर्ष के ऊपर जो निषेक है उसमें आदि स्थिति में पहले निषेक में ऊपर की जो गोपुच्छा है उसके पहले निषेक में गुणश्रेणी, ये पहले की बात फिर दोबारा रिपीट करें। अपूर्वकरण से जो वहाँ कांडक होते आए हैं हर कांडक में यही पोजीशन थी, क्या थी, उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी थी, गुणश्रेणी के पहले निषेक से गुणश्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणाक्रम से दिया, उसके इमीडिएट ऊपर जो निषेक है वो क्या है, तो ऊपर की गोपुच्छा का आदि निषेक है, उसमें असंख्यात गुणाहीन द्रव्य दिया, निक्षेप कर ऊपर सर्वत्र ही विशेषहीन एक एक क्षय घटता हुआ प्रदेश पुंज का निक्षेप करता है। ये अभी तक यही पद्धति चली, इसको गुणकार जो कुछ जिस रूप में दिया जाता है वो चेंज नहीं हुआ था, उसकी परावृत्ति नहीं हुई, ये बात बता रहे। इसलिए इस प्ररूपणा के अनुसार वहां अवस्थित रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है, कैसी प्रवृत्ति, उदयावली को छोड़कर गुणश्रेणी में असंख्यात गुणा देना, गुणश्रेणी के ऊपर के निषेक में असंख्यात गुणाहीन देना, और ऊपर सर्वत्र विशेष ये प्रवृत्ति सर्वत्र चली। इसलिए पल्लवों का असंख्यातवा भाग प्रमाण जो अंतिम स्थिति कांडक है उसके अंतिम समय में गुणकार परावृत्ति चालू होती है। गुणकार परावृत्ति यानी अभी चेंज हो गया, यानी क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पर, क्योंकि गलित शेष गुण श्रेणी के शीर्ष से उपरिम अनंतर स्थिति में भी वहाँ असंख्यात गुणे प्रदेशों का निक्षेप देखा जाता है। अभी तक क्या होता था, शीर्ष के ऊपर असंख्यात गुणा ही न देते थे। क्यों ऐसा था, क्योंकि ऊपर भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण गोपुच्छा ऊपर थी, तो ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो इतने असंख्यात निषेकों में होता था। अब भले असंख्यात निषेक है परंतु अभी स्थिति कितनी बची, 8 वर्ष प्रमाण। तो 8 वर्ष प्रमाण जब बच गई तो जो ऊपर द्रव्य दिया है वो बहुत ज्यादा है, तो वो पहले निषेक में भी जितना गुण श्रेणी के शीर्ष में दिया उससे भी असंख्यात गुणा प्रमाण वहां दिया गया। गुण श्रेणी के लिए जो एक पोर्शन हमने देखा था उसमें से नहीं दिया है, दिया तो ऊपर का द्रव्य ही दिया है, परंतु वो द्रव्य इतने कम निषेकों में बढ़ गया है कि गुण श्रेणी शीर्ष में जो नीचे से असंख्यात गुण प्रमाण में आया है उसके भी असंख्यात गुणा उसके ऊपर के एक निषेक में दिया गया, क्योंकि वो बहुभाग ऊपर से आया है उसको। ये समझ में आई बात? ये तो बात हमने कल भी परसों भी देखी थी, फिर भी दोबारा रिपीट करेंगे। देखो क्या कहना चाहते, अभी तक क्या बात थी, अपूर्वकरण के शुरू से लेकर जो अभी हमने देखी, उदयावली को छोड़ दो, उदयावली के ऊपर गुण श्रेणी रूप से दिया जाएगा, ये गुण श्रेणी शीर्ष और ये कैसा है, गलित शेष है, यानी शीर्ष बदलेगा नहीं, नीचे के निषेक गल जाएंगे और ऊपर उपरिम स्थिति है, उपरिम कितनी है तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति वहां ऊपर शेष है। तो किस पद्धति से दिया जाता है, यहां से लेकर गुणित प्रमाण में
असंख्यात गुणा
और उसे असंख्यात गुणा ही यहाँ दिया जाएगा, यहाँ ज्यादा आएगा ना, यहाँ पर ये सब बाहर निकालो, ऊपर असंख्यात गुणा हीन द्रव्य दिया गया और ऊपर विशेष हीन से दिया गया। अब जब 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रहेगी तब क्या विशेषता होगी, तो कहते अभी ये पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण उपरिम स्थिति थी, अंतिम कांडक की अंतिम पाली गिर गई तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मात्र 8 वर्षों में होगा। अभी जो अंतिम फाली नीचे आती है तो अंतिम फाली आती है तो उसका एक भाग इसमें दिया और बहुभाग इसमें दिया ऊपर, तो एक भाग जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो असंख्यात गुणा क्रम से हर निषेक में गया, बहुभाग जो ऊपर गया वो मात्र 8 वर्षों में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले निषेक में ज्यादा फिर ऊपर थोड़ा थोड़ा कम, तो पहले निषेक में ज्यादा इतना ज्यादा दिया कि गुण श्रेणी वाले अंतिम निषेक में जितना दिया था उससे भी असंख्यात गुना हो गया। वो माल उसका गुण श्रेणी के माल में से उसको नहीं मिला है, उसको मिला तो ऊपर से है परंतु वहां जो दिया गया द्रव्य है वो गुण श्रेणी के शीर्ष से भी असंख्यात गुना हुआ है, ये बात बताना चाहिए। यहाँ ये बात बदल गई, पहले कितना देता था गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर असंख्यात गुणा ही दिया जाता, अभी यहाँ पहले निषेक में गुण श्रेणी शीर्ष से असंख्यात गुणा हो गया। दूसरी बात, यहाँ क्या पोजीशन बदल जाएगी, अब ये उदय के समय से लेकर ऐसा दिया जाएगा, पहले उदय के समय से नहीं दिया जाता था। अब ये जो 8 वर्ष प्रमाण रह गया यानी जो अंतिम फाली है इसकी, तो वहां तो उदय के समय से लेकर इसको दिया गया था। यहां तक बात समझ में आई ना, ये यहाँ गुणकार प्रवृत्ति जो अन्य शुरू हुई है, यहाँ पहले की अन्य थी और यहाँ पर कुछ ये जो दिया जाने वाला द्रव्य है उसका
प्रमाण
उसको बदल गया। ये हम 85 पृष्ठ पर आ गए, अभी देखो हाँ हाँ उसको तो अंतर्मुहूर्त ही है। अरे कृत्रवृत्त वेदक भी अंतर्मुहूर्त है तो अभी यहाँ का तो होगा ही, क्योंकि उसके कृतकृत्य वेदक के ऊपर कांडकोत्तरण जो कांड है उतना लेके यहाँ अंतिम कांडक पकड़ा था, अंतिम कांडक पकड़ा था।
आठ बजे समय है
हाँ, गुण श्रेणी में अंतर्मूर्त
जो है एक भाग नीचे है और दो भाग
ऊपर है।
मतलब अपने 100 द्रव्य मान लिया तो 90 तो ऊपर जा रहा है और 10 नीचे आ रहा है और अंतर्मूर्त के रेशो में इसका रेशो इतना है कि उपनिषद में जो है
वो ज्यादा है,
ज्यादा
असंख्यात गुणा है नीचे के पहले निषेक में थी, क्योंकि वहाँ अंतर्मूर्त, वहाँ संख्यात अंतर्मूर्त ले लो ना, आठ वर्ष में संख्यात अंतर्मूर्त, अभी संख्यात की करोड़ों, अब जो कुछ भी संख्या ले लो आप, संख्यात अंतर्मूर्त ले लो,
संख्यात जो है पूरा वो बहुभाग से छोटा है, तभी तो
वही तो असंख्यात गुना होता है। यानी ऊपर के द्रव्य को यहाँ के समयों से भाग दो और थोड़ा अधिक करो तो पहले निषेक में मिलेगा द्रव्य, क्योंकि वो असंख्यात बहुभाग है।
और ये संख्यात
अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त कर गया तो संख्यात हो जाएगा,
संख्यात का,
और वहाँ तो है असंख्यात का, इसलिए असंख्यात गुना हुआ, असंख्यात गुना हुआ। संख्यात अंतर्मूर्त हम ऊपर लेंगे
और असंख्यात अंतर्मूर्त ऊपर,
और असंख्यात गुणा पल्ले का असंख्यात भाग, यानी वहाँ पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग नीचे दिया गुण श्रेणी में और बहुभाग ऊपर दिया।
वो बहुभाग असंख्यात अंतर्मूर्त में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अभी संख्यात अंतर्मूर्त में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी अपेक्षा से ये
वो तो असंख्यात गुणा द्रव्य आता है। हम इतना ही समझे ना, वहाँ निशे कभी कम है और माल बहुत ज्यादा आया है पूरा, तो वहाँ असंख्यात गुणा वहाँ पाया जाता है। तो ये बात यहाँ हमने पढ़ी है, हम 85 पृष्ठ पर आए हैं।
यहाँ पे जो अपकर्षण उत्कर्षण भागार्थ के जो द्रव्य नीचे आता है वो भी अनंत में ही होगा ना?
हाँ, क्योंकि मूल अनंत में ही है, द्रव्य अनंत में ही है, द्रव्य तो हमेशा अनंत में रहेगा।
नहीं, अपकर्षित होगा होता हुआ जो द्रव्य है,
असंख्यात समय प्रबद्ध बताया, एक समय प्रबद्ध ही अनंत का होता है। असंख्यात गुना यानी वहाँ जो है उससे असंख्यात गुना, अनंत में ही असंख्यात गुना लगाना है। देखो 84 का लास्ट शब्द है ना, इसलिए अभी 85 पर आए, पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जो अंतिम स्थिति कांडक है, यानी इसके बाद अभी 8 वर्ष की स्थिति होने वाली है, उसके अंतिम समय में गुणकार परावृत्ति चालू होती है, चालू होती है ने, अभी ये गुण श्रेणी शीर्ष भी बदलते चले
जाएंगे,
ये उदय के समय से लेके, क्योंकि गलित शेष गुण श्रेणी के शीर्ष से ऊपरी अनंतर स्थिति में भी वहाँ असंख्यात गुणे प्रदेशों का निक्षेप देखा जाता है। पहले असंख्यात गुणा हीन दिया जाता था, अभी असंख्यात गुणा दिया जाता है, क्योंकि अंतिम निषेक का जो माल है वो ऊपर 8 वर्षों में बहुभाग दिया जाता है, तो उसमें भी असंख्यात गुणा मिलेगा। और वहाँ से उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है, इसी पॉइंट से ये जो 8 वर्ष की स्थिति रही उसी समय से लेकर उदय से के समय से लेकर गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाता है, वहां से लेकर अंतिम स्थिति कांडक। ऊपर जो अंतिम स्थिति कांडक कहा था वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण अंतिम स्थिति कांडक कहा था, अब यहाँ जो अंतिम स्थिति कांडक कह रहे हैं वो कृतकृत्य रह जाएगा, वो अंतिम अंतर्मूर्त वाला अंतिम, यानी इसके पश्चात कृतकृत्य वेदक इतना काल रहने वाला है वो अंतिम स्थिति कांडक। तो वहां से लेकर अंतिम स्थिति कांडक के द्विचरम समय तक गुणकार परावृत्ति होती रहती है, होती रहती है, हर समय नई नई होती है, क्या होता है, क्योंकि अवस्थित गुण श्रेणी के कारण, गुण श्रेणी अवस्थित है तो नया नया गुण श्रेणी शेष बनेगा, ऊपर ऊपर का एक निषेक गुण श्रेणी में प्रवेश करेगा, तो अवस्थित गुण श्रेणी के कारण द्विचरम आदि अधस्तन स्थिति कांडकों में सर्वत्र ही पिछले गुण श्रेणी शीर्ष से भी ऊपर एक एक स्थिति में असंख्यात गुणे प्रदेशों का विन्यास निर्बाध रूप से उपलब्ध होता है। यानी 8 वर्ष की स्थिति जब बनी पहले ही समय में क्या हुआ था, गुण श्रेणी के शीर्ष के ऊपर असंख्यात गुणद्रव्य जो ऊपर से आया था, ये बात चलती रहेगी। हर बार एक नया गुण श्रेणी शीर्ष बनेगा और उसके ऊपर के निषेक में असंख्यात गुणा दिया जाएगा, क्योंकि निषेक तो घट रहे हैं वहाँ ऊपर के। परंतु अंतिम स्थिति कांडक के भीतर, यानी द्विचरम कांडक तक तो ये पोजीशन रही, अंतिम स्थिति कांडक के भीतर अनवस्थित गुण श्रेणी को करने वाला, ये अनवस्थित का दूसरा नाम क्या है नितिन भाई? अवस्थित के उल्टा अनवस्थित हुआ, क्या कहेंगे हम उसको? लक्ष्मी बहन बोल दिया, गलित अवस्थित है ना, फिक्स है उसका प्रमाण, नक्की है, ऊपर का एक एक शीर्ष नया नया बनेगा, जो अवस्थित नहीं है वो क्या है? तो गलित अवशेष, नीचे से एक एक समय गल रहा है और वो आयाम उसका छोटा होता चला जाएगा।
यहाँ पे इतने काल तक 8 वर्ष का जब कभी स्थिति हो गई, कभी ऊपर भी असंख्यात गुणा द्रव्य देने लगा, तो ये जो गुण श्रेणी जो नीचे बता रहे, ऊपर भी गुण श्रेणी रूपी रचना हो जाएगी ना?
ना ना, ऊपर तो गोपुच्छा है।
नहीं गोपुच्छा है, पर द्रव्य तो असंख्यात गुणा प्रति समय जाता है।
हाँ, तो वो केवल वही वो गोपुच्छा में सब समाहित हो गया, गुण श्रेणी में भी इतना दिया गया है और अभी ऊपर भी जो है केवल एक निषेक में असंख्यात गुणा है और बाकी ऊपर तो टेपरिंग है।
अच्छा, एक ऊपर के एक ही निषेक में,
एक ही निषेक में असंख्यात गुणा है, बाकी विशेष ही
नहीं, बाकी विशेष ही देता जाता
है। तो ये असंख्यात गुणा
और उसके ऊपर भी विशेष ही प्रमाण में दिया,
यहाँ तो हम ऐसा कहेंगे ना, ये असंख्यात गुणा क्रम से दिया, इससे भी इसमें ज्यादा असंख्यात गुणा हो गया और फिर उससे विशेष ही दिया, यानी आपको ऐसा कहना इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
अल्टीमेटली यू नो विद
इन यू आपका ज्यादा ही रहेगी, यानी ये ऊपर की जो है गुण श्रेणी से भी थोड़ा बाहर निकाल के वो विशेष चिन्ह हम दिखाएंगे, यानी इससे ये ज्यादा हो सकता है। पहले बताया ना,
पहले हमने ऐसे देखा था कि ऊपर भी बहुत द्रव्य जाते जाते ऊपर
भी वही विशेष चिन्ह होगा ना, इतना ऐसा एकदम उसकी अपेक्षा उसमें असंख्यात गुणा दिया पहले में, दूसरे में विशेष ही दिया, कौन विशेष ही दी, असंख्यात गुणा ही तो नहीं दिया उसने, यानी गुण श्रेणी का जो हम बाहर निकालेंगे उससे ये द्रव्य ज्यादा ही रहेगा, यही कहना है ना आपको?
मेरे को
ठीक है, ऐसा ही है, यानी जितना ये यहाँ से दिया था उसमें भी असंख्यात गुणा ज्यादा आया और फिर उसमें विशेष ही नहीं ऐसा हो गया, यानी गुण श्रेणी का जो यहाँ पर दिया गया है उससे ये वाला जो है वो बाहर हो सकता है इससे। अभी केवल वो दो में कितना डिफरेंस है इतना सोचो।
अच्छा, दो में खाली विशेष चिन्ह का डिफरेंस है, बाकी
नहीं, नहीं, दो में असंख्यात गुणा का डिफरेंस है, गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर असंख्यात गुणा दिया,
बराबर
मान लेते हैं ना 100 गुणा दिया और उसके थर्ड में विशेष हीन दिया,
विशेष हीन दिया ना,
वहाँ 100 गुणा दिया, यानी नीचे कितना दिया था मान लेते हैं, नीचे 10 दिए थे, ऊपर 100 गुणा यानी 1000 हो गए, बराबर, और उसमें थोड़ा कम कर दो,
1000 में थोड़ा कम करेंगे,
900 दे दो,
900
फिर भी वो नीचे दिया जो उससे ज्यादा ही हो गया, ऐसा ही कहना है ना? वो ठीक है ना, उसके ना नहीं कह रहे और उसका हिसाब भी नहीं आता है, दो निषेकों के बीच में क्या डिफरेंस था उसकी बात करें, गुण श्रेणी के ऊपर असंख्यात गुणा, आगे विशेष ही, आगे गोपुच्छा रहेगी,
गोपुच्छा रहेगी,
गुण श्रेणी से ये असंख्यात गुणा हुआ है और फिर वो बाहर से उसको विशेष ही रूप से दिया जाएगा, यानी वो दिखने में गुण श्रेणी से बड़ा दिखेगा,
बड़ा ही दिखेगा,
ठीक है ना?
अच्छा, मैं पहले गलत समझा था, पहले ऊपर के एक ही निषेक में असंख्यात गुणा दिखता है,
देखो देखो ये हमने अनवस्थित तक पढ़ा था, देखो
विशेष
विशेष हीन हीन, हाँ गोपुच्छा ही है, परंतु वो इस हमेशा वो गोपुच्छा ही रहेगी, गुण श्रेणी में ही ऐसा चलता है और बाकी गोपुच्छा होती है। पहले गोपुच्छा कैसी थी, बहुत ऐसी सीधी थी,
हाँ, बहुत,
और अभी ये ऐसा
अभी हाँ, साइज में इनो बहुत बड़ी हो गई, हाँ,
क्योंकि वो तो उसके निशे कम हो गए,
हाँ,
तो ऐसे बढ़ेगी ना,
हाँ, हाँ, हाँ।
देखो अंतिम स्थिति कांड के भीतर ये ऊपर से तीन तीन छः सातवीं लाइन, अंतिम स्थिति कांडक के भीतर अनवस्थित गुण श्रेणी को करने वाला, यानी गलितावशेष गुण श्रेणी करेगा अभी, उदय के समय से लेकर गलितावशेष होगी, क्योंकि अंतिम स्थिति कांडक जब शुरू हो गया है तो एक एक फाली गिरेगी और एक एक नीचे से गुण श्रेणी का गल जाएगा और शीर्ष वही का वही रहेगा, शीर्ष का निषेक बदलेगा नहीं। पहले क्या था, अवस्थित थी तो एक एक नया शीर्ष बनता था, अब क्या होगा, शीर्ष वही फिक्स हो गया, अभी कांडक के नीचे का जो निषेक है वो शीर्ष
फिक्स हो गया,
नीचे के उदय में आते हुए वो नीचे नीचे आ रहा है,
हाँ। श्रेणी का आयाम कम होता जा रहा है,
हाँ, ये अंतिम स्थिति कांडक के टाइम चल रही बात। तो कहते हैं अंतिम स्थिति कांडक के भीतर अनवस्थित गुण श्रेणी को करने वाला जीव गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणित क्रम से प्रदेश पुंज का सिंचन कर पुनः तदनंतर उपरीम स्थिति में असंख्यात गुणे हीन प्रदेश पुंज का सिंचन करता है, ये दिए जाने वाले की बात है। क्यों, अभी तक क्या हो रहा था,
फाली
जितने फाली गिरती थी
उसका द्रव्य
तो उसमें से तो एक तो फाली का द्रव्य कम था, दूसरी बात नीचे एक भाग ये नीचे बहुभाग ही देता था और ऊपर एक भाग डिस्ट्रीब्यूट होता था,
नीचे एक भाग देता था ऊपर बहुभाग देता था,
अभी उल्टा हुआ, अब नीचे बहुभाग जाएगा तभी तो ऊपर असंख्यात गुणाहीन दे रहे हैं,
हाँ।
द्विचरम कांडक तक नीचे एक भाग देता था
ऊपर
और ऊपर बहुभाग देता,
अंतिम कांडक में फिर
अंतिम कांडक में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी वो सारे नष्ट हो जाने वाले हैं और नीचे कुत्ते कुत्ते वेद कितना ही रहेगा, ऊपर ही अगर बहुभाग देता रहेगा तो नष्ट कब हो गए, हाँ। अब बहुभाग नीचे जा रहा है और एक भाग ऊपर कांडक के अंदर ही अंदर दे रहे, पहले क्या था कांडक के नीचे भी निषेक थे बहुत सारे, द्विचरम कांडक तक कांडक को छोड़कर गुण श्रेणी के और कांडक के बीच में निषेक थे बहुत, अभी क्या हो रहा है पोजिशन अंतिम कांडक ग्रहण किया तो अंतिम कांडक का बहुभाग नीचे दिया जाएगा और एक भाग कांडक के अंदर ही अपने अपने नीचे वहाँ निक्षेपन होगा, तो इसलिए वहाँ पहले निषेक में यानी कांडक के आदि निषेक में असंख्यात गुणाहीन दिया जाएगा। अब तक क्या होता था, शीर्ष के ऊपर असंख्यात गुणा दिया जाता था, अब असंख्यात गुणाहीन दिया जाता है जितने शीर्ष में दिया जाता है, फिर भी वहाँ के निशे कितने बड़े हैं, असंख्यात गुणाहीन देने पर भी वो बड़े दिखेंगे, दृश्यमान और दीयमान में अलग बात है, ये बातें हम बताना चाहते हैं। उसके बाद मिला प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक विशेष हीन प्रदेश पुंज का सिंचन करता है, ये कांडक के अंदर वाले ही प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष है जो अपूर्वकरण के शुरुआत में शुरुआत की थी, वो जिसको हमने कांडक में अंदर इंक्लूड कर दिया था, तो वहां तो क्या होगा विशेषहीन, जो दिया जाने वाला द्रव्य भी विशेषहीन गोपुच्छा रूप से होगा, उससे ऊपर की स्थिति में भी असंख्यात गुणहीन प्रदेश कुंज का सिंचन करता है, ऊपर क्या थे अलग अलग गुण श्रेणियां जो बनती गई थी पूर्व में वो थी, उसमें भी असंख्यात गुणहीन दिया गया, उसके बाद विशेषहीन प्रदेश कुंज का सिंचन करता है, अभी विशेषहीन हुआ, पहले असंख्यात गुणाहीन था अब विशेषहीन हो गया, क्योंकि असंख्यात गुणाहीन क्यों था, क्योंकि वहाँ पूर्व के गुण श्रेणी शीर्ष पड़े, वहाँ ऑलरेडी माल ज्यादा ही था और ऊपर विशेषहीन रूप से दिया गया टॉप मोस्ट नीचे को,
जो पहले का गुण श्रेणी शीर्ष था उसके ऊपर जो द्रव्य जाता है वो विशेष ही क्रम से जाएगा,
देखो ये पुराना गुणश्रेणी शीर्ष, क्योंकि इसके अंदर भी पुराना गुणश्रेणी शीर्ष था ना, जो हमने जिसको कांडक रूप से ग्रहण किया था, वहाँ तो एक पुराना गुणश्रेणी शीर्ष था सबसे नीचे, उसके ऊपर जो एक एक समय में जो अलग अलग गुणश्रेणी शीर्ष बनते गए थे
वो थे।
तो वहाँ तक मेजोरिटी द्रव्य तो वहीं पर दिया जाए और ऊपर थोड़ा कम इस तरह से दिया था। तो शुरुआत में असंख्यात गुणाहीन दिया और ऊपर विशेष हीन दिया। कांडक में एक ही भाग दे रहे हैं,
भाग का डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए।
हाँ,
कांडक के अंदर हम देखा दूसरी कितनी है और अन्य कितनी है।
हाँ,
हाँ,
गुणश्रेणी के तक असंख्यात गुणा हीन दिया और ऊपर विशेष हीन दिया। हाँ, उसके अंदर दो, क्योंकि सबका मिलकर एक गोपुच्छ करना है। अब गुणश्रेणी जो आईसी थी उसको आईसी बनानी है, ख्याल में आता है ना? फिर से देखो देखो देखो, हम थोड़े दो दो कलर्स में करेंगे इसका।
तो एक बार में गुणश्रेणी दे रहे हैं तो दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, एक तो गुणश्रेणी और एक वो।
देखो पहले हम कहेंगे ये पुरानी गुणश्रेणी थी, कब की बात है?
ये जो अपूर्वकरण
के शुरुआत अपूर्वकरण शुरुआत में ये गुणश्रेणी थे, उसके नीचे उदयावली जो यथायोगी उदयावली वहां थी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की तो कुछ बात ही नहीं है। यहाँ असंख्यात गुणा दिया जाता था और ऊपर जो जो है वो बहुत स्थिति थी ना, पहले के असंख्यात विभाग जितने, तो यहाँ जितना असंख्यात गुणा दिया जाता था
प्रतिनिषेक असंख्यात व्यापार जाएगा,
यहाँ इसके असंख्यात गुणा हीन द्रव्य यहाँ इसमें दिया जाएगा। इस तरह से होगी नहीं, ऊपर असंख्यात गुना हीन हो गया। जब आठ वर्ष की स्थिति रहेगी तो ऊपर का सब कट हो गया। अब आठ वर्ष की स्थिति हुई तो क्या होगा?
ऊपर भी असंख्यात गुना द्रव्य रहेगा।
यहाँ उदय के समय से लेकर
गलित अवशेष, अरे अवस्थित
अवस्थित
गुणश्रेणी
गुणश्रेणी, ये गुणश्रेणी का माल तो इसने तक ही दिया। अब जो ऊपर से डायरेक्ट इसको मिलने वाला है वो इससे भी असंख्यात गुना हो गया, इसके ऊपर का नीचे, ये इसमें मिल गया। इसको माल तो ऊपर से मिला, फिर भी गुणश्रेणी शीर्ष से असंख्यात गुना इसको मिला। अब ये इस तरह से और वो भी विशेष ही हो जाएगा, एकदम यहाँ यहाँ नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। ये ऊपर ऐसा एकदम था ना, तो अभी दब गया तो ऐसा स्प्रेड हो गया, तो इसको यहाँ तक नहीं पहुँचाना, ऐसा विशेष हीन में लिया ना, असंख्यात गुणाहीन तो नहीं है तब का। अब इसके बाद क्या होगा? अंतर्मुत अंतर्मुत के शुरू हो जाएगा। अब ये नए नए गुणश्रेणी शीर्ष होते चले जाएंगे और तब तक यहाँ कांडक होते, और ये कैसे है? अवस्थित गुणश्रेणी है, नीचे का एक एक निषेक गलेगा
और ऊपर नया
और ये ऊपर, तो इस तरह से यहाँ तक आ गया। गुणश्रेणी शेष बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि इसका काल अवस्थित है ना, ये हमारा प्राचीन यहाँ पड़ा है ना, ये प्राचीन वाला ये गुणश्रेणी शीर्ष, ये जो पहले वाले
गुण है वो पड़ा
है, ये पड़ा है इधर, इतना ही था, उसमें भी माल आता गया ना बहुत
सारा,
हर समय में असंख्यात गुणा है, वो तो कितना बड़ा हो गया है। अब यहाँ कांडक का ग्रहण किया, अभी अंतिम कांडक, इसके नीचे से लेकर ऊपर का सर्व ही कांडक रूप से ग्रहण किया, यहाँ से लेकर, यानी अभी नया गुणश्रेणी शीर्ष बनेगा इस समय का, ऊपर का पूरा कांडक में चला जाएगा, अब उसकी फाली नीचे दी जाएगी। अब यहाँ से किस प्रकार दिया जाएगा?
बहुपाद नीचे जाएगा,
उदय के समय से लेकर फिर वो असंख्यात गुणा इस तरह से दिया जाएगा, असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा, उदय के समय से लेकर असंख्यात गुणा कहाँ तक? ये शीर्ष तक,
नए शीर्ष तक,
नए शीर्ष तक, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पूरा कांडक है। बहुभाग नीचे दिया, गुण श्रेणी में दिया, एक भाग ऊपर दिया। तो एक भाग जो ऊपर दिया है, अब यहीं से गुण श्रेणी फैली हुई है, यानी इस तरह से हम दिखाएंगे यहाँ पर, ये गुण श्रेणी थी यहाँ पर ऐसी, क्योंकि उसके इसको ऐसा समझ सकते हैं, नहीं इस तरह से था। तो इसमें कैसे दिया, जहाँ गुण श्रेणी शीर्ष में जितना दिया उसके ऊपर कितना दिया था,
असंख्यात भाग
यहाँ लिखा ना,
एक भाग ऊपर गया और बहुभाग नीचे गया,
असंख्यात गुना हीन दिया ना अंतिम स्थिति कांडक के भीतर। तो यहाँ असंख्यात गुना हीन दिया, अभी यहाँ असंख्यात गुना नहीं दिया, क्योंकि पूरे का कांडक का ही द्रव्य असंख्यात गुना नीचे आया है गुण श्रेणी में, एक भाग ही ऊपर दिया है, एक भाग में से अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी असंख्यात गुना हीन द्रव्य इसमें दिया गया, जितना इसमें दिया इन कंपैरिजन इसमें कम दिया है, तो ये कम दिया, तो असंख्यात गुणाहीन असंख्यात गुणाहीन ऊपर तक खेला जाएगा। तो ये इस तरह से इसमें ये असंख्यात गुणाहीन रूप से ऐसी होगी। अब ये दिखाने में ये पहले वाला हम मिटा देंगे, क्योंकि यहाँ दिखाना है, ये असंख्यात गुणा दिया असंख्यात गुणाहीन दिया, कब तक, ये सारे निषेकों के कवर होने तक। और ऊपर तो गोपुच्छा ऐसी थी, उसमें फिर वो विशेषहीन इस तरह से ऊपर तक, यानी फाइनली ये गोपुच्छा दिखेगी, इतनी बात ख्याल में नहीं है। इसी पद्धति से द्रव्य दिया जाएगा कि फाइनल वो एक गोपुच्छा बनेगी, क्योंकि यहाँ गुण श्रेणी रूप से थे उसको कवर करने के लिए, यहाँ असंख्यात गुणाहीन रूप से दिया, ख्याल में थे, ये ऐसी गुण श्रेणी पूर्व की थी, पहले तो ऐसी थी ना, अब यहाँ इतना दिया असंख्यात गुणा, फिर ये असंख्यात गुणाहीन रूप से दिया, और फिर ऊपर विशेषहीन रूप से दिया, वो गोपुच्छा एक तैयार हो जाएगी।
हमेशा गुण श्रेणी के ऊपर गोपुच्छा ही रहेगी,
हाँ,
खाली उनका कद बढ़ता जाएगा,
हाँ, इसलिए वो देय रूप द्रव्य उसके हिसाब से दिया जाएगा,
प्रोपोर्शनेटली।
यहाँ लिखा ना, प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणा विशेषहीन, उसके ऊपर भी असंख्यात गुणाहीन, उसके बाद विशेषहीन, इस प्रकार अनवस्थित क्रम से प्रदेशों का सिंचन देखा जाता है। प्रदेशों का सिंचन जो देने का जो द्रव्य है वो भी कम ज्यादा है, अनवस्थित है, फिक्स रूप नहीं है, कहीं असंख्यात गुणाहीन, कहीं विशेषहीन, कहीं फिर असंख्यात गुणाहीन, कभी विशेषहीन। पुनः अंतिम स्थिति कांडक के अंतिम समय में, या अंतिम समय गुणकार परावृत्ति नहीं है, क्यों, वहाँ उदय के समय से लेकर शीर्ष तक बिल्कुल असंख्यात गुणा है, यानी कहीं असंख्यात गुणा कहीं असंख्यात गुणाहीन, ये डिफरेंस वहाँ नहीं है। हाँ, भले नीचे के गुणकार से लास्ट दो में जो गुणकार था वो ज्यादा है, उसकी बात छोड़ दो, परंतु गुणकार परावृत्ति नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम इस तरह से नहीं है।
ये पलक के असंख्यात भाग जो अंतिम कांडक लिया, वहाँ पे सम्यक विख्यात तो प्रकृति थी,
अभी अभी उसकी बात नहीं चल रही है,
अभी उसकी बात नहीं चल रही
है,
अभी तो मैं समझ गया, पर वहाँ पे सम्यक प्रकृति थी, उसकी अंतिम कांडक की, अरे अंतिम पाली गिरने वाली थी,
समय मिथ्या,
वहाँ से ये गुणकार प्रवृत्ति चालू हो गई,
यानी पहली गुणकार प्रवृत्ति कुछ अलग थी,
हाँ,
यानी वही चली थी,
हाँ,
जो कुछ थी,
हाँ,
यानी डिफरेंस नहीं हुआ था,
हाँ, और वापस अंतिम कांडक जब भी शुरू हुआ तभी गुणकार प्रवृत्ति में वापस परावर्तन हुआ,
वहाँ जब से वो गलित अवशेष मिटकर अवस्थित बनी थी,
हाँ,
वहाँ परावृत्ति शुरू हुई,
हाँ, हाँ, और अभी जो अंतिम कांड शुरू हुआ वहाँ पे वापस गुणकार प्रवृत्ति कुछ अलग चालू
अलग हो गई, हाँ,
और अभी अंत में अंतिम काफाली गिरेगी तभी
वहाँ
तक
कोई गुणकार प्रवृत्ति नहीं, क्यों, वहाँ तो गुणित प्रमाण नहीं है, उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं है, वहाँ उदय के समय से लेकर गुणित प्रमाण में है बस, क्योंकि अभी मात्र गुण श्रेणी वो तो कृत्य वेदक वाली इतनी गुण श्रेणी रहेगी और कुछ नहीं है उसमें, गुण श्रेणी और ऊपर ऐसा डिफरेंस है ही नहीं वहाँ पर। गुणकार परावृत्ति नहीं है क्योंकि, नीचे से हम तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं, वहाँ उदय से लेकर गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रदेश विन्यास करके गुणकार परिवर्तन के बिना पर्यवसान देखा जाता है। नहीं नहीं, गुणकार परिवर्तन के बिना पर्यवसान देखा जाता है, यानी वो गुणकार परिवर्तन वहाँ नहीं रहता है। इस सबको मन में करके शेष समयों में गुणकार परावृत्ति नहीं है यह कहा है। यहाँ सूत्र भी, सूत्र फिर पढ़ना लेफ्ट साइड में 84 पृष्ठ पर जो सूत्र लिखा ना हिंदी में, पल्लवपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो अंतिम स्थिति कांडक है, उस स्थिति कांडक के अंतिम समय में गुणकार परावृत्ति होती है। यहाँ जो कुछ चेंज हुआ था क्योंकि वहाँ उदय के समय से शुरू हुआ था एक बात, और गुण श्रेणी के ऊपर भी असंख्यात गुणा दिया था और ऊपर विशेष चिन्ह दिया था। वहाँ से लेकर अंतिम स्थिति कांडक के द्विचरण समय तक यह गुणकार परावृत्ति होती है, यानी चेंजेस होते रहते हैं हर समय, अलग अलग चेंज होता गया, हर समय गुण श्रेणी शीर्ष बदला, हर समय जो कुछ बातें बनी, शेष समयों में गुणकार परावृत्ति नहीं होती, ये यहाँ बताना चाहते थे। इसी का विशेषार्थ, अभी हमारे कहने में कुछ भूल होगी तो और सुधारेंगे। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव के भी दर्शन मोह आदि की उपशमना आदि करने वाले जीवों के समान अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर स्थिति कांडक घात आदि का प्रारंभ होकर, यानी ये हमने कहा क्या विशेषताएं होती, वो दर्शन मोह की उपशमना में गत 12वीं पुस्तक में देखा था। अब ये जो कहते हैं कि स्थिति कांड घात, अनुभाग कांड घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण वगैरह बातें, ये अपूर्वकरण से शुरू हो जाती है। प्रत्येक समय में अपकर्षित प्रदेश पुंज का गुण श्रेणी में और अपनी अपनी अति स्थापनावली की पूर्व तक अन्य स्थितियों में निक्षेप होता रहता है। ये हर बार अति स्थापना की बात नहीं कहेंगे, जिस निषेक में से द्रव्य नीचे आता है उसके नीचे आवली में दिया नहीं जाता, उसके नीचे सर्वत्र दिया जाता है। उक्त जीव के यद्यपि यह क्रम कृतकृत्य होने के पूर्व तक होता है, फिर भी सर्वत्र एक समान स्थिति कांडक न होकर, क्योंकि कांडक का प्रमाण भी बदलता है ना, छोटे छोटे होता गया था, अंतिम कांडक बड़ा हुआ था,
पहले तो कांडक कम होता जाता था,
वही तो अंतिम जो है कृतकृत्य होने के एक समय पूर्व वाला जो या एक अंतर्मुख पहले वाला जो वो संख्यात गुना था। तो कहते उनके आयाम में उत्तरोत्तर स्थिति सत्कर्म के अनुसार अल्पता आती जाती, उसी को बताएंगे। यथा अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व का पल्लवपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने तक जो हजारों स्थिति कांडक को हुए कांडक होते हैं, फिर वापस पहले की बात बता रहे अपूर्वकरण की शुरुआत की, उनमें से प्रत्येक का आयाम पल्लवपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण होता है। अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में कितनी स्थिति थी,
लक्ष्य
अनिवृत्तिकरण में लक्ष्य पृथक्व सागर होता है, पृथक्व लक्ष्य सागर,
वहाँ पे कोटि पृथक्व,
लक्ष्य कोटि,
हाँ लक्ष्य कोटि
ऐसा कुछ था ना,
हाँ लक्ष्य कोटि पृथक्व,
अंत को
लक्ष्य कोटि पृथक्व,
वही तो लक्ष्य करोड़ कहा उसको, उसकी कहा उसको आप
कौड़ी
कौन है, कौड़ी के ऊपर है, कौन सा लाख कौड़ी है, हमने कहा पृथक्व लाख करोड़, अनिवृत्तिकरण में पृथक्व लाख सागर हो जाता है। तो वहाँ कांडक का प्रमाण कितना था, तो पल्ले के संख्या था, ये बात बता रहे। कब तक कहते हैं, तो पल्ले प्रमाण स्थिति होने तक, ये तो बात हुई ना अपनी बहुत बार, हाँ अनिवृत्तिकरण, परंतु ये कांडक कहाँ से शुरू हुए थे, पल्ले की संख्या
अपूर्वकरण
से हुए, तब कांडक का प्रमाण भले हर बार कितना था तो पल्ले के संख्या से भाग, फिर भी वो घटता चला गया स्थिति के अनुसार। फिर पढ़ती हूँ, यथा अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व का पल्लवपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने तक, ये मात्र मिथ्यात्व की यानी दर्शन मोहनी की स्थिति की बात कर रही, जब तक पल्ले प्रमाण शेष रहे तब तक क्या हुआ, वो जो हजारों स्थिति कांडक होते हैं उनमें से प्रत्येक का आयाम, एक एक कांडक कितना बड़ा लंबा था, पल्लवपुंग के संख्यात वे भाग प्रमाण, यहाँ से लेकर, यहाँ से यानी पल्ल्य प्रमाण स्थिति से लेकर दुरापकृष्टि प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने तक। दुरापकृष्टि क्या है? ये पल्ल्य का संख्यात वा भाग वाला अंतिम विकल्प है यार, इसके भाग में असंख्यात बहुभाग कट हो जाएंगे और पल्ले का असंख्यात वा भाग शेष रह जाए, शेष रहेगा। तो पल्ले से लेकर दुरापकृष्टि तक जो हजारों स्थिति कांडक होते हैं, प्रारंभ से लेकर उत्तरोत्तर उनका आयाम शेष रहे स्थिति सत्कर्म के संख्यात बहुभाग प्रमाण होता है, क्योंकि संख्यात बहुभाग कांडक रूप से नष्ट होता है और संख्यात वा भाग शेष रहता चला जाता है। दुरापकृष्टि प्रमाण स्थिति सत्कर्म से लेकर प्रत्येक स्थिति कांडक का आयाम शेष रहे स्थिति सत्कर्म का असंख्यात बहुभाग प्रमाण होता है, क्योंकि असंख्यात बहुभाग कांडक होता है और असंख्यात वा भाग शेष रहता है। यह क्रम क्रम से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा होकर सम्यक्त्व के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने तक चालू रहता है। असंख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग नष्ट होते होते उसका प्रमाण सर्वत्र कितना है कहेंगे तो पल्ले का असंख्यात भाग, फिर भी वहाँ असंख्यात भाग शेष रहता है और असंख्यात बहुभाग नष्ट होता है। कब तक चलेगा? जब सम्यक्त्व की 8 वर्ष प्रमाण रहेगी, स्थिति रहेगी। सम्यक मिथ्यात्व भी क्षपणा हो गई, सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष रहेगी। यहाँ से लेकर सर्वत्र इस जीव के कृतकृत्य वृत्य हुआ, कृतकृत्य होने तक प्रत्येक स्थिति कांडक का आयाम अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। हमने देखा था 8 वर्ष के पहले पल्ले का असंख्यात भाग था, अभी अंतर्मूर्त होने लगा। यह कहाँ प्रत्येक स्थिति कांडक का कितना आयाम होता है इसका विचार है, यानी कहाँ कहाँ कौन कौन सा आयाम है उसकी बात हो गई। इस संबंध में यथा स्थान गुणकार का निर्देश करते हुए जो गुणकार परावर्तन का उल्लेख किया गया है उसका आशय यह है कि जब तक प्रत्येक समय में गलित शेष गुण श्रेणी की रचना होती रहती है तब तक तो गुणकार परिवर्तन नहीं होता, परंतु जिस समय इसका स्थान अवस्थित गुण श्रेणी लेती है, अपूर्वकरण के पहले समय से गलितावशेष की गुण श्रेणी वही का वही शीर्ष वही का वही रहा था और गुणकार भी वही का वही रहा, गुणकार ने जहाँ कितना
द्रव्य
दिए तो उसकी जो कुछ गुणकार की बात वो भी बता दी। अब जिस समय इसका स्थान अवस्थित गुण श्रेणी लेती है, कब लेती है? जब 8 वर्ष की स्थिति हो जाती है, तब उस अवस्थित गुण श्रेणी की अंतिम स्थिति में गुणकार परिवर्तन होता है, क्योंकि नीचे एक स्थिति के गलने पर ऊपर यानी गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर एक स्थिति की वृद्धि हो जाती है, यानी गुण श्रेणी का आयाम उतना का उतना रहता है। अभी तक उदयावली बाह्य गलित शेष गुण श्रेणी की रचना होती थी, किंतु यहाँ से उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से यानी कहाँ से?
8 वर्ष
यहाँ से इतनी विशेषता और समझनी चाहिए। आगे यहाँ से लेकर अंतिम स्थिति कांडक के द्विचरम समय तक इसी गुणकार परिवर्तन इसी कारण गुणकार परावर्तन होता रहता है, क्योंकि अन्य नए निषेध उसमें आ मिलता है, क्योंकि यहाँ तक प्रत्येक समय में उदय रूप से एक स्थिति के गलने पर ऊपर गुण श्रेणी शीर्ष में एक स्थिति की वृद्धि होती रहती है। अंतिम स्थिति कांडक के पतन के समय गुण श्रेणी का विन्यास अनवस्थित रूप से होने के कारण अब ये गलित शेष बन जाती है। जब अंतिम स्थिति कांडक शुरू होने वाला है यानी कृतकृत्य वेदक का काल बाकी रहेगा, जब अंतिम फाली खिरेगी तो कहते हैं गुण श्रेणी का विन्यास, विन्यास यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रदेशों का, वो अनवस्थित रूप से होने के कारण इतनी विशेषता है, उसे रचता हुआ यानी नया नया, यानी वहाँ तो क्या होगा, नीचे से गल जाएगा, शीर्ष नहीं बदलेगा, परंतु शीर्ष के ऊपर कितना द्रव्य दिया जाएगा,
असंख्यात गुणा।
तो कहते शीर्ष के ऊपर असंख्यात गुणा ही
एक बाकी जाएगा।
आठ वर्ष का था तब जब से असंख्यात गुणा जाता है, अब ऊपर कम जाता है, असंख्यात गुणा ही जाएगा। गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित क्रम से गुण श्रेणी की रचना करता हुआ उसके ऊपर की स्थिति में असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंजों की रचना करता है। ये बात ख्याल में आई ना। तथा उससे ऊपर प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष तक विशेष हीन द्रव्य का निक्षेप करता हुआ उससे ऊपरी स्थिति में असंख्यात गुणे हीन चाहिए ही हुआ है हीन। पहले हमने देखा था ना, ये तो विशेष अर्थ चल रहा है। देखो क्या क्या हुआ, नीचे गुण श्रेणी में गुण का रूप में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, उसके ऊपर के निषेक में असंख्यात गुणहीन, उसके ऊपर प्राचीन गुण शीर्ष तक विशेषहीन, प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर फिर असंख्यात गुणा है और फिर ऊपर विशेष है, ये दो जगह असंख्यात गुणाहीन हुआ। गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर असंख्यात गुणाहीन, प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष तक विशेषहीन, उसके ऊपर फिर असंख्यात गुणाहीन और फिर विशेषहीन। किंतु यह व्यवस्था द्विचरम समय तक की जाननी, पहली फाली से द्विचरम फाली तक ये बात बदलेंगे। अंतिम समय में तो इस प्रकार गुणकार परावर्तन नहीं होता, क्यों? अभी अंतिम फाली के लिए पूरा कांडक ही नष्ट होगा, कांडक के अंदर द्रव्य देने का सवाल ही नहीं है, पूरा का पूरा द्रव्य नीचे ही आएगा और नीचे तो शीर्ष तक गुणित प्रमाण में ही दिया जाएगा। तो अंतिम समय में तो इस प्रकार गुणकार परावर्तन नहीं होता, क्योंकि उस समय गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से ही प्रदेश पुंज का विन्यास करता। बात ख्याल में आई, तो बहुत अटपटी है, इमेजिन करने में बहुत तकलीफ है। इसमें आगे क्योंकि वो पहले से बात से पूरी हुई है और जब हम उसको ड्राइंग करते हैं तो ज्यादा और समझ में आने में आसान हो जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे। अब कृतकृत्य जीव के काल के भीतर मरण और लेशा परिवर्तन पहले होता है, यह सामान्य से कहा है, पहले होता है ना, पहले होता है ऐसा पहले कहा है। गुण वहाँ लेशा परिवर्तन भी होता है, मरण भी हो सकता है, ये बात पहले बता चुके हैं। अब कहते किंतु अब विशेष रूप से कथन करते हुए उसी कथन का यहाँ अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण होगा। आगे के प्रबंध को कहते हैं, ऊपर का सूत्र कहाँ है, लेफ्ट साइड में, परम समय कद करणिज्जो जदि मरदि देवोसु वो वज्जदि नियमा। कृतकृत्य जीव यदि प्रथम समय में मरता है तो नियम से देवों में उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कहा कि देवों में उत्पन्न होने वाला पहले समय में मरता है, उल्टा रिवर्स इज नॉट ट्रू, अंत में मरने वाला भी देव में जा सकता है। नहीं समझे,
समझ गया।
ऐसा नहीं कहा कि देवों में जाने वाला पहले पहले ही मरता है, ऐसा नहीं कहा, पर जो शुरू में प्रथम समय में अगर मरता है तो नियम से देव में जाता है, इस ओर से तो ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। कृतकृत्य वेदक का पहला समय, अभी तक इसके पूर्व तक तो मरण नहीं था,
नहीं।
अभी कृतकृत्य वेदक हुआ और एक समय में मरा मान लेते हैं तो नियम से देव में जाएगा। कृतकृत्य होने के प्रथम समय में ही यदि मरण करता है तो नियम से देवगति में ही उत्पन्न होता है अन्य गतियों में नहीं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, यह नियम किस कारण से है? समाधान, क्योंकि वहां पर शेष गतियों में उत्पत्ति का कारणभूत लेशा परिवर्तन का होना असंभव असंभव हुआ है, असंभव म करना उसका, भ के पहले म लगता है, असंभव। यानी जो लेशा चेंज हो सकती है, कपोत लेशा वगैरह हो जाती है, तो यहाँ तो अंतर्मुख तो लगेगा लेशा का चेंज होने के लिए। इसी प्रकार कृतकृत्य जीव के तत्प्रायोगिक अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल के अंतिम समय तक द्वितीय आदि समयों में भी देवों में ही उत्पत्ति का नियम जानना चाहिए। यानी शुरुआत के एक अंतर्मुहूर्त काल में यदि मरण होता है तो देव में ही उत्पन्न होगा, पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, इसे अंतर्मुहूर्त। उसके बाद मरण करने वाला कृतकृत्य जीव शेष गतियों में भी पहले बांधी हुई आयु के कारण उत्पत्ति के योग्य होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र आया है।
मतलब अंतर्मुहूर्त के बाद
मरण होगा तो जो कोई आयु बांधी है हाँ उसमें जाएगा। जयी नैरयेषु वा तिरिक्खजोनियेषु वा मनुष्येषु वा उवज्जति नियमा अंतोमुहूर्त कदकरणिज्जो। यदि नारकियों में, तिर्यंश योनियों में और मनुष्यों में उत्पन्न होता है तो नियम से कृतकृत्य होने के अंतर्मुहूर्त काल बाद ही उत्पन्न होता है। क्योंकि उन गतियों में उत्पत्ति के कारण रूप संक्लेश और लेशा परावर्तन की उतना काल गए बिना उत्पत्ति नहीं पाई जाती। लेशा में जो चेंज हो जाता है
अंतर्मुहूर्त,
वो अंतर्मुहूर्त तो बाद ही होगा। विशेषार्थ, यहाँ कृतकृत्य भाव से युक्त उक्त जीव मरकर कब किस गति में उत्पन्न हो, इस प्रसंग से जिन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है वे हृदयंगम करने लायक है। प्रश्न यह है कि कृतकृत्य होने के प्रथम समय में यदि मरता है तो देवों में ही क्यों उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए देवायु के उदय का उल्लेख न कर वहां टीका में बतलाया है कि उस समय मरकर यह जीव अन्य गतियों में उत्पन्न हो, उसके परिवर्तन होकर इस प्रकार की लेशा नहीं पाई जाती। पहले ही समय वहां क्यों देवायु का उदय हुआ इसलिए उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहा, तो कहता है अन्य गतियों में अगर उत्पन्न होना है तो लेशा परिवर्तन होने आवश्यक है और उसके लिए अंतर्मुहूर्त लगता है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पर मरेगा तो देव में ही चला जाएगा। इस समय उक्त जीव के देवायु का उदय नहीं होता ऐसा नहीं है, जिसका कृतकृत्य होने के प्रथम समय में मरण होता है उसके बध्यमान एकमात्र देवायु ही सत्व स्वरूप होती है। जिसने बद्धायु जो है बांधी हुई देवायु ही वहां हो सकती है और उस समय उसका नियम से उदय हो जाता है। इसका मरण हो गया तो उसका मरण वहां उदय हो जाएगा, मरकर देव भी उत्पन्न हो जाएगा। परंतु इस जीव ने उस समय जो मनुष्य पर्याय छोड़कर देव पर्याय ग्रहण की है मुख्य रूप से वह अपनी अंतरंग योग्यता के कारण ही। देखो यहाँ उपादान की बात बता रहे हैं, हम तो वहां बाहर ही देखते रहते कौन सा कर्म आया, लेशा नहीं हुई हा? क्यों नहीं गया अन्यत्र, तो कहते अपने मुख्य रूप से अपनी अंतरंग योग्यता के कारण ही। वो आत्मा की पर्याय समझना, वो शरीर धारण करा उसको मत समझो, आत्मा की मनुष्य पर्याय थी अब उसकी अभी देव पर्याय हुई। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी योग्यता के कारण, देवायु के उदय के कारण उस समय वह देव हुआ, इस कथन को मात्र इसीलिए उपचरित स्वीकार किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? हम मनुष्य क्यों बने, मनुष्य आयु के उदय के कारण बने कि नहीं बने? तो हाँ, अपनी योग्यता से। तो मरकर देव में गए तो देवायु के उदय के कारण देव हुआ कि नहीं?
अपनी योग्यता।
ये अंतरंग की अपनी योग्यता के कारण ये बता रहे हैं। तो देवायु के उदय से देव हुआ ये कहना उपचरित कथन है। कथन नहीं होता वो तो नहीं बात, क्योंकि कर्णान योग में कथन तो ऐसे ही हो गए सर्वत्र। तो कहते ये उपचार का कथन है, कर्मों पर आरोप देकर उसके कारण वो उस गति में उत्पन्न हुआ ऐसा कहेंगे, ये बात बता रहे हैं। इसी प्रकार उपादान उपादेय संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध सर्वत्र आगम में स्वीकार किया गया है। यानी उपचरित कथन जहाँ जहाँ है वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा समझना, परंतु कार्य तो अपने उपादान से ही होता है और द्रव्य का अपने पर्याय के साथ उपादान उपादेय संबंध है। और परद्रव्य के साथ अगर कर्ता कर्म जैसा अगर कोई कथन आता है तो निमित्त नैमित्तिक का समझना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है, इस जीव के कृतकृत्य होने के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल तक देवगति को छोड़कर अन्य गतियों में उत्पन्न होने योग्य संक्लेश परिणाम और लेशा परिवर्तन क्यों नहीं होता? समाधान यह है, अंतर्मूर्त काल तक उक्त जीव में स्वयं ही ऐसी पात्रता नहीं होती। वह कृतकृत्य होने के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल तक देवगति को छोड़कर मरकर अन्य गतियों में जाने योग्य संक्लेश परिणाम को उत्पन्न कर सके। हमने देखा है अभी कोई भी ऐसा जो उत्कृष्ट विशुद्धि वाला कार्य होता है तो इमीडिएट उसके संक्लेश नहीं हो जाते। पहले तो हमने ये भी देखा था कि समय दृष्टि रहा, मिथ्या तो में जाते ही संक्लेश नहीं होते उसके, अंतर्मूर्त जाने के बाद उसके संक्लेश बढ़ना चालू हो जाता। तो यहाँ तो कृतकृत्य वेदक जैसा उत्कृष्ट विशुद्धि का कार्य हो रहा है तो इमीडिएटली उसके लेशा का परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ लेशा में नहीं बताते हुए अन्य गति में जाने योग्य संक्लेश परिणाम ही सके। और जब वह इस जाति का परिणाम ही उक्त काल के भीतर भीतर हुआ, भीतर पैदा नहीं कर सकता, तो बदल कर तदनुरूप लेशा का होना तो और भी असंभव है। उसके संक्लेश नहीं होते तो लेशा का परिवर्तन भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर भी उस जीव की अपनी ये योग्यता पर ले लिया उसको। इतने विवेचन से दो बातों का पता लगता है, एक काल में अंतरंग और बहिरंग साधनों का योग स्वयं होता है। क्या कहा?
एक काल में अंतरंग और बहिरंग,
यानी बहिरंग काल तो ढूंढने पड़ते हैं और अंतरंग तो अपनी योग्यता होती है ना,
वो भी हो जाते हैं।
क्यों? तो स्वयं उसका योग होता है, यानी स्वयं उनका उस समय उपस्थिति हो जाती है। और जिस कार्य के वे सूचक होते हैं, अंतरंग और बहिरंग जो कारण साधन, उस काल में वह कार्य भी द्रव्य के परिणमन स्वभाव के कारण स्वयं होता है। अभी अंतरंग बहिरंग साधन में तो हम अंतरंग बहिरंग निमित्त को भी ले सकते हैं, और ये तीसरा कारण वो द्रव्य की परिणमन स्वभाव अपना, ये उपादान कारण। कहीं कहीं अंतरंग उपादान को कहा और बहिरंग निमित्त को कहा। हमें पता है निमित्तों में अंतरंग बहिरंग करते हैं। अंतरंग निमित्त किसको कहना है?
जो नियम से आचार्य कर्म
नियम रूप निमित्त को, दो निमित्त में ही
नियम रूप निमित्त होता है वो,
उसको कहेंगे अंतरंग साधन, अंतरंग निमित्त। यानी जो जो कार्य जिस समय होना है वो द्रव्य के परिणमन स्वभाव के कारण स्वयं से होता है। उस समय उस द्रव्य की उसी पर्याय रूप परिणमने की योग्यता होती है, तो उसमें अनुकूल अन्य भी योग सहज हो जाता है। अंतरंग बहिरंग जो कुछ साधन है वो स्वयं वहां प्राप्त होते हैं। अविना भाव संबंध वश ही उनमें परस्पर कार्य कारण व्यवहार होने का नियम है। यानी जहां जो होगा तो वहां वो पाया ही जाएगा। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। जई तेउ पम सुत्के भी अंतो मुहूर्त कद करणिजो। यदि वह तेज पद्म और शुक्ल लेशा में से किसी भी लेशा में अवस्थित है तो कृतकृत्य होने के बाद भी अंतर्मूर्त काल तक उस लेशा में ही अवस्थित रहता है, यानी उसकी अपनी लेशा अंतर्मूर्त तक रहेगी। इस प्रकार कहने वाले आचार्य का यह अभिप्राय है, अध प्रवृत्त करण में विशुद्धि को पूर्ण कर तेज पद्म और शुक्ल इनमें से किसी एक शुभलेशा में दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ कर पुनः जब जाकर यह जीव कृतकृत्य होता है तब तक उसके पूर्व में प्रारंभ की गई वही लेशा पाई जाती तथा पुनः उसके आगे भी जब तक अंतर्मूर्त काल नहीं गया तब तक प्रारब्ध ने प्रारंभ की हुई उक्त लेशा को छोड़कर अन्य लेशा रूप परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि कृतकृत्य भाव को प्राप्त होने वाले जीव के पूर्व में प्रारब्ध हुई लेशा का उत्कृष्ट अंश होता है। पीत में शुरू किया हुआ तो उसके अंश बढ़ते बढ़ते पीत के उत्कृष्ट तक पहुंच जाएंगे या पद्म के उत्कृष्ट या जो अव्यथा योग्य, पुनः उसके मध्यम अंश को प्राप्त कर अब कृतकृत्य में आने के बाद क्या होगा, लेशा नहीं पलटेगी, उसके अंश पलटे, उसके मध्यम अंश को प्राप्त कर और अंतर्मूर्त काल तक उस रूप रहकर जघन्य अंश में भी जब अंतर्मूर्त काल तक नहीं रह लेता, मान लेते कि शुक्ल का उत्कृष्ट किया फिर वो मध्यम हुआ फिर उस जघन्य हुआ फिर जघन्य में भी रहकर बाद में वो पद्म रूप हो जाएगा, तब तक अन्य लेशारूप परिवर्तन का होना संभव नहीं है। एक ही अंश में रहता है ऐसा नहीं, विशुद्धि तो अनंत गुणी बढ़ती है परंतु वो अपने अपने लेशा में उसके सारे स्थान हो गए, क्योंकि एक एक लेशा में भी असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान है और उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण बार षट स्थान वृद्धि होती है, यानी उतने अनंत गुणी वाले स्थान उसमें है। अथवा अभी दूसरा भी बता रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी, तेउ पम सुक्के भी अंतो मुहूर्त कद करणि जो। इस सूत्र का कुछ आचार्य इस प्रकार भी अर्थ करते हैं कि जिस प्रकार अध प्रवृत्त करण के प्रारंभ में पूर्वोक्त विधि से तेज पद्म और शुक्ल लेशा में से अन्यतर लेशा के साथ क्षपण क्रिया का प्रारंभ करने वाला जो जीव, हमने देखा था तीन शुभ लेशा में किसी एक लेशा में प्रारंभ करता है, तो कहते वह जीव पुनः दर्शन मोह की क्षपणा रूप क्रिया की समाप्ति होने पर, समाप्ति वही हुई जब कृतकृत्य रूप से बाकी रहा वहीं पर उसको समाप्ति कहेंगे, कृतकृत्य रूप से परिणमन करता है उसके नियम से शुक्ल लेशा ही होती है ऐसे किसी किसी का कहना है, क्योंकि विशुद्धि के द्वारा उत्कृष्ट कोटि को प्राप्त हुए उक्त जीव के शुक्ल लेशा के होने में विरोध नहीं है, यानी भले वो पीत पद्म शुक्ल किसी में शुरुआत करे वो शुक्ल तक पहुंचता है ऐसा कहीं किसी का कहना है। पुनः उसका विनाश होने से कौन सा, विशुद्धि अभी इतनी टॉप मोस्ट नहीं रही
शुक्ल,
तो कहते आगम में बतलाई गई विधि के अनुसार यदि तेज और पद्म लेशा रूप से परिणत होता है तो आगम में विधि कौन सी बताई, तो अभी उत्कृष्ट है फिर मध्यम होगा फिर जघन्य होगा तेज और पद्म लेशा रूप से परिणत होता है तो कृतकृत्य होने के बाद जब तक अंतर्मूर्त नहीं जाता तब तक वह उक्त लेशा रूप से परिवर्तन नहीं करता। दो मत है, एक तो अपनी अपनी लेशा में रहता है उत्कृष्ट अंश तक पहुंचता है, दूसरा मत के शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट तक पहुंचता है, फिर भी दोनों में ये बात है कि अंतर्मूर्त के बाद ही उसका लेशा का पलटना हो सकता है। विशेषार्थ क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय शुभ तीन लेशाओं में से कोई एक लेशा होती है। प्रश्न यह है कि कृतकृत्य सम्यक दृष्टि होने के पूरे काल तक वही एक लेशा बनी रहती है या वह बदल जाती है, एक प्रश्न तो यह हुआ। साथ ही दूसरा प्रश्न यह भी है कि कृतकृत्य होने के बाद लेशा की क्या स्थिति बनती है। इन दोनों प्रश्नों का समाधान उक्त सूत्र द्वारा करते हुए कतिपय आचार्य ये कतिपय क्या होता है नितिन भाई, आचार्य का नाम है क्या है? तो हाँ कोई कतिपय ने कितने, कतिपय ने कितने ही आचार्य ऐसा कहते, कितने ऐसा कहते ना केटलाक। आचार्य उक्त सूत्र की क्या व्याख्या करते हैं यह उसकी टीका में बतलाया गया है। टीका का आशय स्पष्ट होने से यहाँ हम उस पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि मूल टीका में उन्होंने विस्तार से बताया दोनों ही मत। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा कृतकृत्य सम्यक दृष्टि के लेशा परावर्तन के क्रम का कथन कर अप्रकृत अर्थ का उपसंहार करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। एवं परिभाषा समत्ता, इस प्रकार परिभाषा समाप्त हुई। इस प्रकार यह सूत्र परिभाषा समाप्त हुई, इस प्रकार प्रकृत अर्थ का उपसंहार करने वाला यह सूत्र वाक्य सुगम है। विशेषार्थ, देखो यहाँ कुछ डेफिनेशन बताए, परिभाषा की भी परिभाषा बता रहे। सूत्र में जो अर्थ कहा गया हो या उसके द्वारा जो अर्थ सूचित होता हो उसके व्याख्यान करने को विभाषा कहते हैं। क्या कहा? सूत्र में जो बताया है या उस अर्थ द्वारा जो सूचित होता है। अब दूसरी यहाँ डेफिनेशन बता रहे, तथा जो अर्थ सूत्र द्वारा कहा गया हो, प्रकरण संगत होने पर भी जो अर्थ सूत्र द्वारा नहीं भी कहा गया हो, कहा हुआ है कहा गया हो, यानी जो जो सूत्र में कहा है उसके सूत्र में नहीं भी कहा है परंतु प्रकरण को वो लागू होता है, और जो अर्थ देशामर्शक रूप से सूचित किया गया, पूरा स्पष्ट नहीं है परंतु देशामर्शक
कुछ बताए,
कुछ बताए, उस सबके व्याख्यान करने को परिभाषा कहते हैं। एक हुई विभाषा और एक हुई परिभाषा। परि याने सर्वांग रूप से,
विभाषा में जितना कहा गया उतना क्या व्याख्यान करना, हाँ,
वो विभाषा हो,
और परिभाषा में सीधो कुछ देशामर्शक रूप से बताया, हाँ, उसको
वो
भी
जो कोई उपदेश भी चले आते हैं उसके वो भी उसमें बताना। सूत्र में कहा गया हो उस विषय को लगता है परंतु सूत्र में नहीं कहा है या देशामर्शक रूप से कहा है, सबको बताना, ये परिभाषा। इस प्रकार परिभाषा के इस लक्षण के अनुसार यहाँ पूर्वोक्त चूर्णी सूत्र द्वारा यह सूचित किया गया है कि दर्शन मौखिक क्षपणा संबंधी जो पांच सूत्र गाथाएं पूर्व में निर्दिष्ट की गई है उनके उक्त अनुक्त सभी प्रकार के विषय का यहाँ तक चूर्णी सूत्रों द्वारा विवेचन किया गया है। उक्त ने जो सूत्रों में बताए थे उसको हम उक्त कहेंगे। अब कितने आचार्यों के जो उपदेश शुरू से चले आए उसको भी लेखते हुए चूर्णी सूत्रकार ने विस्तार से बताया, तो वो अनुक्त हो गया, उसका भी यहाँ विवेचन किया। इतना अवश्य है कि इस अनुयोग द्वार संबंधी पांचवी सूत्र गाथा की परिभाषा स्वयं चूर्णी सूत्रकार ने आगे की है। इस प्रकार इसका उपसंहार करके अब बीज पदों का अवलंबन लेकर इस अनुयोग द्वार के पद विशेष, वो विशेष हुआ, पद विशेष संबंधी पदों की पूर्ति करने वाले अल्प बहुत्व का कथन करते हुए क्या कहना चाहते हैं? इस संयुक्त द्वार में जो कोई बातें बताई है, स्थिति कांडक घास बताया, अनुवाह कांडक बताया, गुण श्रेणी का जो आयाम बताया, अन्य अन्य जितनी कुछ बातें बताई है, तो कहते हैं उनको अल्प बहुत्व का कथन करते हुए तद विषय, सर्वप्रथम तद विषय प्रतिज्ञा वाक्य को कहते हैं। यानी यहाँ जो कोई प्रोसेसेस हुए, जो कुछ काल अल्अलग अलग हुए उसका अल्प बहुत यहाँ बताएंगे।
क्या अभी आगे का जो ये दूसरा मत देखा कि विशुद्धि बढ़ती जाती है तो उसमें शुक्ल निश्चय हो ही जाएगी,
ऐसा उनका दो मत है, दो मत
है। और दूसरे आचार्य के मत से शुक्ल लेशा तक की विशुद्धि नहीं होगी,
अपनी लेशा की उत्कृष्ट हो जाती, तेज की उत्कृष्ट होगी या पद्म की उत्कृष्ट होगी, जो शुक्ल है वो शुक्ल की उत्कृष्ट।
पर एक बात तो दोनों में फिक्स ही है कि क्यों जो लेशिया में उसके उत्कृष्ट विश्रुति के साथ ही सपड़ा का कार्य होगा,
एक मत में तो शुक्ल तक पहुंच जाता है।
हाँ, नहीं पर शुक्ल के भी
उत्कृष्ट तक पहुंच जाता है,
पहुंचेगा। सो पद्म में भी जो करता है उसका भी उत्कृष्ट भाव होगा, और शुक्ल एशिया दूसरे आचार्य के बच्चे भी शुक्ल एशिया का भी उत्कृष्ट भाव होगा।
अब ये जो सूत्र है ना नया, उसको हम पढ़ेंगे। दंशन मोहनीय खवगस्स पढ़म समय अपूर्व करणम आदिम कादुन जा वो पढ़म समय कदकरण इज्योति एदम्य अंतरे। अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर कृतकृत्य वेदक के प्रथम समय तक एदम्य अंतरे अनुभाग खंडय ठिवि खंडय उत्कीर्ण ध्यानम जहन्न उत्कृष्यानम ठिदि खंडय ठिदिवंद ठिदि संत कम्माणम जहन्न उत्कृष्यानम आवाहनम च जहन्न उत्कृष्यानम अन्यसिम च पदानम अप्पा बहुवम वत्त इच्छामो। इतना इतना अल्प बहुतो मैं बताऊंगा ऐसे कहते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे आपको ख्याल में आएगा ज़्यादा। दर्शन मोह की क्षपना करने वाले जीव के प्रथम समय में अपूर्वकरण से लेकर, यानी अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर कृतकृत्य होने के प्रथम समय तक पूर्वकरण के प्रथम समय ऐसा होना चाहिए तो ठीक है। यानी जीव के अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर ऐसा चाहिए था ठीक। कृतकृत्य होने के प्रथम समय तक इस अंतराल में जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल, ये पूरा एक शब्द अनुभाग कांडक पूरा होने के लिए जो काल लगता है उसको अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल कहेंगे। उत्करण भी आता है शब्द, उत्कीर्ण भी आता है, दोनों आते हैं, कांडकोत्करण काल ऐसा भी आता है, तथा स्थिति कांडक उत्कीर्ण कालों के यानी जघन्य स्थिति कांडकोत्करण काल उत्कृष्ट स्थिति कांडकोत्करण काल वो कहाँ होगा, शुरू में होगा कि लास्ट में होगा। जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कांडक पहला बताया वो कांडक का काल,
अभी कांडक का
और अभी कह रहे कांडक का आयाम। स्थिति बंध यानी स्थिति बंध कितना होता था उसका जो प्रमाण, फिर स्थिति सत्कर्म, स्थिति सत्कर्म कहाँ कितना बाकी है उसका प्रमाण। जघन्य और उत्कृष्ट आबाधा, ये दर्शन मोनी की क्षपना चल रही है। उत्कृष्ट जघन्य आबाधा किसकी लेनी, हाँ कौन से कर्म की, दर्शन मोनी कौन, दर्शन मोनी का कौन सा कर्म बन रहा है, बन रहा है उसके आबाधा कैसी कहेंगे,
आबादा बंद में होती,
आबादा बंद में होती। हाँ बोलो बोलो क्या कहते हैं,
ये अन्य कर्मों की आबादा की बात
नेचुरली। यहाँ तो दर्शन मुनि बनता ही नहीं ना, वो तो मिथ्यात्व में बनता था, यहाँ तो क्षपणा की बात चल रही है।
एक अवली हो गई, अभी आबादा तो चली गई,
अवली की बात कहाँ कर रहे हैं, वो तो उपशम समय के बाद हो गया, फिर एक हो गया, अभी शाही की पूर्णता हो चुकी करीबन। तो कहते यहाँ दर्शन मोह तो बंद का कोई सवाल ही नहीं है, तो आबादा जो है अन्य कर्मों के लिए ना, यहाँ पर ज्ञानावरणादि अन्य जो बंद रहे यहाँ पर उसकी आबादा। ये कहानी है, मगर अभी हम सोच सकते ना जघन्य और उत्कृष्ट आबादाओं के तथा अन्य पदों के, अन्य भी जो कुछ यहाँ पद होगी उसकी भी यहाँ पर अल्प बहुतो बताएंगे, यानी यहाँ के आगे जाए यहाँ से आगे अल्प बहुतो बताएंगे। इसके लिए वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि इससे अन्य अन्य पदों के अल्प बहुतो यहाँ मैं बताऊंगा।
तो उत्कृष्ट आबादा भी अंतर्मूर्ति होगी ना, बाकी का भी अंतर कोड़ा कोड़ी बंद
अभी सब आने वाली बात, जरा शांति रखो। यह सूत्र सुगम है क्योंकि दर्शन मोह की क्षपणा से संबंध रखने वाले जघन्य और उत्कृष्ट पद विशिष्ट यथा निर्दिष्ट यानी जो बताए चुके उनके इन पदों के अल्प बहुत्व को करेंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा मात्र में इस सूत्र का व्यापार है। मैंने इस सूत्र में मात्र प्रतिज्ञा की है कि मैं अल्पभूत को बताऊंगा अलग अलग इन पदों में, तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब यहां से अल्पभूत शुरू हो जाएगा। एक सूत्र पढ़ेंगे, सवत फोवा जहन्या अनुभाग खंडय उत्कीर्ण धा, अनुभाग कांडक का जघन्य उत्कीर्ण काल सबसे थोड़ा है। ये कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है? अपूर्वकरण से लेकर कृतकृत्य जब बना तब तक की बात है। तो अनुभाग कांडक छोटे में छोटा कब होगा, उसका काल लेना है आप। हाँ, जब उसने अनुसमयापवर्तन कर लिया ना, उसके पहले वाला कांडक जब 8 वर्ष की स्थिति बाकी रही तब उसके अनुभाग कांडक समाप्त हो, यानी अंतिम अनुभाग कांडक, अंतिम अनुभाग कांडक कहेंगे उसको। जब सम्यक की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रही,
जब लास्ट कांडक पर संख्या प्रमाण हो रहा था उसमें भी लास्ट अनुभाग
स्थिति कांडक की बात कर,
नहीं वो स्थिति कांडक के
अनुभाग कांडक कहो ना लास्ट वाला,
तो उसमें भी लास्ट अनुभाग कांडक ऐसे ही पकड़ लिया।
अनुभाग कांडकों में उसको लास्ट कहेंगे, वहाँ जो समाप्त हुआ है उसकी बात है हम, और उसका ही कांडक का आयाम नहीं लिया है, उसकी रण
काल लिया है।
जबकि उसके पहले का लास्ट वाला अनुभाग कांडक घात जो किया, कितने काल में किया, वहाँ का जो अंतर्मूर्त है वो सबसे थोड़ा। अनुभाग कांड का जघन्य उत्कीर्ण काल सबसे थोड़ा है। सबके स्तोक को सर्वस्तोक कहते हैं। ऊपर कहे जाने वाले समस्त पदों से ऊपर, यानी इसके बाद, इसको तो हम पहला नंबर दे देंगे। स्तोक तरह यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, अनुभाग कांडक का वह जघन्य उत्कीर्ण काल कौन सा है, यह किस स्थान का लेना चाहिए, उसका समाधान। सर्वप्रथम दर्शन मुनि के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म के रहने पर जो पहले का अनुभाग कांडक है, यानी 8 वर्ष रहने के जस्ट पहले का, उसका उत्कीर्ण काल सबसे जघन्य है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। परंतु कृतकृत्य होने के प्रथम समय में, अभी अन्य कर्मों की बात कर रहे हैं, कृतकृत्य होने के प्रथम समय में ज्ञानावरणादि शेष कर्मों का जो पहले का अनुभाग कांडक है, यानी जो अनिवृत्तिकरण के अंत में हुआ था, अनिवृत्तिकरण के अंतिम अवस्था में उसका उत्कीर्ण काल सबसे जघन्य है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। दर्शन मुनि के बारे में 8 वर्ष की स्थिति शेष रही तब का जो समाप्त हुआ था उसको लेना, और अन्य कर्मों में कृतकृत्य वेदक के पहले समय से एक समय पूर्व जो समाप्त हुआ उस अनुभाग कांडक को लेना अन्य ज्ञानावरणादि में, क्योंकि उससे आगे कृतकृत्य काल के भीतर स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात आदि क्रियाओं की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि वो तो करण परिणाम से वहां पर हो जाए। अतः सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि निमित्तक, वहां विशुद्धि सबसे ज्यादा है, यह सबसे जघन्य है, यह सिद्ध हुआ। इसको उन्होंने एक नंबर दे दिया। अब आगे की बात हम कल से देखेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूर्य लोक।